بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتقبين الغر المعمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم وقوله الحق وهو الأصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليه آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صلوات
اللهم صل على محمد وآل محمد
عزیزان محترم ایک کے بعد ایک دن گزرتے جا رہے ہیں گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور ایام عزا کے یہ بہترین لمحات کے جس میں ہمارا آقا اور مولا ہمارا مہمان ہے ہم سے ایک ایک دن کر کے جدا ہوتے جا رہے ہیں یہ ماہ محرم اس عظیم الشان قربانی کی یادگار ہے کہ جس نے اسلام کو زندہ کیا اسلام کی قدر و منزلت کو زندہ کیا انسان کے وقار کو باقی رکھا شریعت محمدی کو حیات بخشی ظالم کے چہروں کو بے نقاب کر دیا انسان کو ظلم کے خلاف لڑنا سکھا دیا ظلم کی طاقتوں کی حیثیت بتا دی اور لوگوں کو یہ سکھا دیا کہ ضروری نہیں ہے کہ زندہ رہ کے انسان جاویدہ بنے مزہ تو یہ ہے کہ خود کی جان چلی جائے لیکن مقصد زندہ رہے چھری کی دھار سے کٹتی نہیں چراغ کی لو بدن کی موت سے کردار بن نہیں سکتا امام عالی مقام نے یزید کی جسمانی طاقت کو اور اس کی فوجی طاقت کو لوگ بھول گئے لیکن امام عالی مقام کی اس کردار کو اس کریکٹر کو جو آپ نے ظلم کے خلاف لوگوں کے سامنے پیش کیا وہ آج تک یاد ہے اور نہ صرف یاد ہے بلکہ دنیا کا ہر انقلاب اس سے طاقت لے رہا ہے اس سے نصیحت لے رہا ہے اور اس سے درس حاصل کر رہا ہے وہ کبھی ظالم کے آگے سر جھکا سکتا نہیں جس نے آنکھوں سے نہیں دل سے بڑی ہے کربلا वो कभी जालिम के आगे सर झुका सकता नहीं, जिसने आंखों से नहीं जिनसे बड़ी है करबला, मिट गए टकरा के कितने शाहजादों के गुरूर, आज भी को है अमल बनकर खड़ी है करबला। उसने एक किरदार ऐसा पेश किया कि लोग दुनिया के जुल्म और तशद्दुद को भुला सकते हैं, लेकिन एक दिन में आए हुए इस इंकलाब को दुनिया नहीं भुला पाई। और ना सिर्फ ये कि लोगों को भूल जाने की आदत होती है, बल्कि ऐसे एहतमाम किए गए, जुल्म भी किया, तशद्दुद भी किया, लोगों पर सख्तियां भी की। अब आप देखते होंगे कि आजादारी को हमारे यहां पर रस्म यह है कि हम इस तरह से मनाते हैं, सोज सलाम मरसिया, हदीस पढ़ते हैं, उसके बाद दोहा पढ़ते हैं, उसके बाद इमाम की खिदमत में ज्यारत पढ़ते हैं, और उसके बाद उन्हीं के नाम का तबर्रुक बांटते हैं। ये हमारे यहाँ पर रस्म है, लेकिन इसको हम अपना तरीक़ेकार समझ रहे हैं। हकीकत में ये हमारे पास एक औजार है कि जिसके जरिए हम उस हुसैन मजलूम की ज़ात और उसकी बात और उसकी याद को अपनी आने वाली नस्ल तक पहुंचा रहे हैं। हम इस अमल के जरिए अपने बच्चों तक बता रहे हैं कि ये मजलिस किसकी है, क्योंकि हर वाक़े के पीछे तीन सवाल खड़े होते हैं, क्यों हुआ, कब हुआ और कैसे हुआ। अब ये यहाँ अमेरिका है, यहाँ पर तीन चीजें ज्यादा हैं। एक तो सवाल करते हैं वाई, एक कहते हैं बाय, और एक कहते हैं हाय। यहाँ पे जो है ज्यादातर ये है कि वाई पूछते जरूर हैं, पहले हाय करते हैं कि कैसे हैं आप, फिर वाई करते हैं कि क्यों हैं आप, और फिर बहुत जल्दी समझे बगैर कहते हैं वाई, क्योंकि इनका नहीं बल्कि एक ऐसा मेथड यूज किया जा रहा है कि जिसके जरिए बच्चे जो हैं डजंट मैटर और आई डोंट केयर, ये दो तीन जुमले इसके जरिए बड़ी बड़ी बातों का इग्नोर कर दे। लेकिन हकीकत यह है कि हम इस आजादारी के जरिए हम अपने आने वाले बच्चों को हुसैन के इस गम को इसलिए पहुंचाते हैं ताकि जब वो गम को जानेंगे तो हुसैन को जानेंगे, हुसैन को जानेंगे तो मकसद हुसैन को जानेंगे, और मकसद हुसैन को जानेंगे तो दीनदार हो जाएंगे। तो इसलिए हुसैन में मजलूम का गम और उसकी याद और उसका जिक्र और उस पर नौहा और फुका, उसका मातम, ये वसीला बन रहा है हमारे बच्चों को सही रास्ते पर लाने का। और हकीकत भी है कि उस हुसैन ने कुर्बानी दी है हम सब के इख्तदार और हमारी कदर और मंजिलत बशर और करामत बशर को बचाने के लिए, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उस मजलूम को याद करें। कुछ जगह पे आपने देखा होगा कि आजादारी को जो है ताजिया खानी की शक्ल में लोग किरदार और कैरेक्टर बन जाते हैं, और जिस तरह से ड्रामा होता है इस तरह से उसको पेश करते हैं। चूंकि हमारा और आपका तरीक़ेकार वो नहीं है, ईरान में अरब में इस तरीके के तरीक़ेकार को अपनाया गया, तो हमें वो बुरा लगता है कि लो साहब इमाम हुसैन का नाटक कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, नहीं। या कहीं आप देखेंगे जा बजा कि कभी अली अकबर के कलेजे पे तीर लगी हुई तस्वीरें मिलेंगी, कभी जनाब अली असगर के गुरु पे तीर लगा हुआ मिलेगा, तो ये भी मिलेगी। उसके लिए भी हमारे पास बहुत से सवाल आते हैं कि अकबर ये मौलाना ये क्यों लोग बनाते हैं, देखिए कोई अली अकबर ऐसे थे या अली असगर ऐसे थे। देखिए ये एतराजात उस वक्त होते हैं कि जब हमारे समझ में नहीं आती बात। हकीकत में ये आजादारी ऐसे अदवार से ऐसे दौर से गुजरी है कि उसका हम और आप अंदाजा नहीं लगा सकते। हम तो बड़े खुश नसीब है कि यहाँ पर बेहतरीन गर्मी है तो हीटिंग सिस्टम में बैठे हैं, सर्दी है तो हीटिंग सिस्टम में बैठे हैं, गर्मी है तो कूलिंग सिस्टम में बैठे हैं, और उस पर भी जरा सी कमी रह जाए तो मुंतजमीन को चंदा देते टाइम समझा दिया जाए कि हुजूर ये ले तो लीजिए लेकिन ये मसला हल कीजिए आप। क्योंकि अभी हम आराम में हैं। इस आजादारी को खत्म करने के लिए कौन कौन से वक्त गुजरे, जब इस मजलिस और मातम और सीना जनी पर पाबंदी लगा दी गई तो उस दौर में तरीका बदला। लोगों ने कहा कि आजादारी करने पे पाबंदी है, ड्रामा करने पे तो पाबंदी नहीं। लोगों ने राजा और बादशाह के नाम से ही ड्रामे करने शुरू किए और उसमें अपने करबला के किरदारों को पेश किया ताकि लोग ये समझे कि ये तो कोई काम चल रहा है, लोग अपने एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। हकीकत ये थी कि उसके जरिए जो है हुसैन की याद को बताया जा रहा था। एक दौर ऐसा भी आया कि उसमें इस चीज पे भी पाबंदी लगा दी गई तो मुसाफिरीन ने अपना उस वक्त पर खतीब काम नहीं आया। जब पाबंदी पढ़ने पर लगा दी गई तो उस वक्त आर्टिस्ट काम आए कि जिन्होंने अपनी आर्ट को वसीला बनाया और नस्ल आइंदा के लिए हुसैन के इस गम को एक कहानी और किस्से की शक्ल में लोगों को दिखाना शुरू किया। लेकिन जब बात बढ़ी और उनको भी पाबंदी लगा दी गई तो फिर मुसव्विरीन जो आर्टिस्ट थे, जो तस्वीरें बनाते थे, वो आगे बढ़े कि हम आज अपना कंट्रीब्यूशन देंगे और हुसैन के इस मजलूम गम को आने वाली नस्ल तक पहुंचाएंगे। किसी ने अली असगर के इस हौलनाक वाकये को तीर लगा के दिखाया, किसी ने अली जवान अली अकबर के कलेजे पे बर्छी लगती हुई दिखाई, किसी ने अबुल फजल अब्बास को नहर फरात में खड़ा होकर दिखाया। तो बज़ाहिर लोगों के नजदीक वो एक तस्वीर कशी थी, एक मंजर कशी थी, लेकिन हकीकत में एक बात को अपने इबलाग को तबलीग ज़रायत इबलाग अलग अलग है। एक जमाना ऐसा होता था कि किताब होती थी, लेकिन किताब में कोई वाकया लिख दिया जाए तो किताब का वाकया उसके लिए मुफीद है जो पढ़ा लिखा है। बात और आगे बढ़ी कि जब ये मुफीद आम ना हो सकी तो फिर उसको जो है मौलवी हजरात या मुकर्ररीन ने उसको पढ़ पढ़ के लोगों को सुनाना शुरू किया। तो जिसको पढ़ना आता था वो भी समझ रहा था और जिसको पढ़ना नहीं आता था वो भी समझ रहा था। लेकिन ऐसे मजमे में भी फिर कुछ गूंगे और बहरे भी नजर आए कि जिनको सुनाई नहीं दे रहा था, अब ये चाहे जितना बोल लें जो कर लें। तो फिर ऐसे लोगों के लिए जो है तस्वीरें काम आई, उनके ड्रामे काम आए कि उसके जरिए वो देखे, देख तो समझ तो सकता है कि क्या हो रहा है, वो देख तो सकता है कि क्या हो रहा है और वो ये नतीजा भी निकाल सकता है कि इसके गलत तीर लगाया जा रहा है या इसको गलत मारा जा रहा है। और अगर वो भी मसला नहीं था तो फिर और आगे बढ़े तो बहना तस्वीर कशी है। तो ये आलात औजार जराए जिसको कहते हैं मीडिया, ये तब्दील होता गया लेकिन गमे हुसैन नहीं होगा। गमे हुसैन आज जो हमारी नस्लों में बाकी है वो ना जाने कितने लोगों की कुर्बानियों का नतीजा है। इंशाल्लाह इस पर गुफ्तगू बहस पूरी मुफसल बहस होगी। लेकिन हकीकत यह है कि हम फौरी तौर पे किसी चीज पे एतराज करते हैं तो उस एतराज के वक्त हमारी मालूमात का दायरा होता है। जैसे जैसे हम अपनी मालूमात को बढ़ाते जाएंगे ऐसे ऐसे जो है ये दायरे बढ़ते जाएंगे। अक्सर हमसे क्या हुजूर हमारे 12 इमामों में कोई फर्क नहीं था, ये मराजे के फतवों में फर्क कहां से आ गया, इन्हें झगड़ा करते हैं आपस में, इनमें लड़ाई होती, 2 मिनट में नतीजा निकाल दिया कि उनमें तो नहीं था। आपने उनको पूरा पढ़ा भी है, ये तो नतीजा वही लगा सकता है कि जो अव्वल से आखिर तक हर इमाम की तमाम रिवायात को पढ़े। अजीजों ये इख्तलाफ मराजे का नहीं, ये इख्तलाफ क्योंकि मराजे के हाथ बंधे होते हैं उसूल से कि जो कुछ हमारे अहले बैत ने बयान किया है उसी को वो बयान कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास 4 चीजें होती हैं फतवे के लिए, कुरान सुन्नत इजमा अक्ल। कुरान में देखें हल नहीं मिला तो सुन्नत में देखते हैं, सुन्नत के भी 3 तरीके हैं, कौल मासूम, फेले मासूम, तकरीर मासूम। मासूम ने कौल क्या बयान फरमाया उसमें नहीं मिला तो इमाम की तारीफ पढ़ते हैं, उसमें शायद कोई फेल नजर आ जाए कि इमाम मौसमी का जूस पीते नजर आ गए ताकि हमारे लिए हलाल हो जाए, हम जान लें यही कौल तो है नहीं, हमें कुरान में नहीं, कहीं नहीं लिखा कि मौसमी का जूस पियो, तो अब कैसे हम निकालें। तो इमाम के कौल में देखा कि वहां भी कोई तारीफ नहीं लिखी कि साहब आप मौसमी का जूस पी सकते हैं। अब हमने तारीफ देखी कि शायद कोई तारीफ ऐसी निकल जाए जिसमें हमें इमाम कोई जूस पीता हुआ नजर आ जाए, तो वहां भी नहीं मिली, तो इसका मतलब हम हराम की तरफ जा रहे हैं। लेकिन एक तारीफ ऐसी मिली कि इमाम के सामने उनका एक सहाबी पी रहा था लेकिन इमाम ने मना नहीं किया। इमाम का मना नहीं करना इस बात की दलील है कि वो नाजायज चीज नहीं है, जायज अमल है, लिहाजा इमाम ने खामोशी इख्तियार कर ली। क्योंकि इमाम इतनी जुरात रखता है कि कोई दौर, किसी जमाने का दौर उसको हक बात कहने जो शजाअत और इस्मत अल्लाह ने जो देके भेजी है, हमारा हर इमाम हर जमाने में शजा रहा है, वो हमें और आपको बचाने के लिए खामोश रह सकता है, लेकिन अपने आप को बचाने के लिए वो शरीयत से चश्मपोशी नहीं करता। लिहाजा अब वाकया मिलता है कि इमाम जाफर सादिक अलैहि सलाम इमाम के पास एक शख्स आया, पढ़ाने के बाद कहने लगा, फरजंद रसूल मैं तीसरी और चौथी रकत नमाज में तस्बीहात अरबा कितनी मरतबा पढ़ू? इमाम ने फरमाया 3 मरतबा पढ़ो। उसने इमाम का दस्ते मुबारक छुआ और चला गया। थोड़ी देर बाद एक शख्स आया, उस शख्स ने कहा, फरजंद रसूल मैं तीसरी और चौथी रकत में तस्बीहात अरबा जो पढ़ते हैं, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर पढ़ते हैं, वो तस्बीह है कि जिसको पढ़ के ही फरिश्ते जो है अर्श को उठा सके, जब तक ये ना पढ़ा गया अर्श हिला भी नहीं। बहरहाल जो भी होगा, हिलने से मुराद जो भी माना रहेंगे, लेकिन तस्बीह आते अरबा इमाम ने फरमाया उस दूसरे वाले से कि 1 मरतबा पढ़ो। उसने इमाम के दस्ते मुबारक को चूमा, परेशानी का भरोसा नहीं और चला गया। अब चूंकि वो दोनों अलग अलग टाइम में आए थे तो दोनों को अलग अलग इंफॉर्मेशन मिली, लेकिन वो जो सहाबी इमाम के पास बैठा हुआ था उसका तो डबल माइंड हो गया। फर्जंद रसूल ये तो मैं नहीं कह सकता कि आपसे खता हो सकती, लेकिन उस आने वाले को 3 का और इस आने वाले को 1 का इसकी वजह उसका फलसफा दरियाफ्त कर सकता हूं मैं? इमाम ने फरमाया, देखो तुम सही कह रहे हो, जो तुम्हारे लिए ये एक अजीब और गरीब अमल है कि एक ही चीज एक इंसान को 3 मरतबा के लिए कहा और एक ही इंसान को 1 मरतबा के लिए कहा। अब ये एतराज जो है हम डॉक्टर्स पे नहीं करते हैं कि वो किसी को तो 100 मिलीग्राम की लिख देता है और वही दवा किसी को 500 की लिख देता है, तो वो डॉक्टर कहेगा कि कंपनी के हिसाब से, उसके फायदे के हिसाब से थोड़ी डॉक्टर ये थोड़ी है कि नहीं आज ये है कि हमारे पास टाइम नहीं है, कल छुट्टी है, वीकडेज है, तो लिहाजा 2 इंजेक्शन आज ही लगवा लो। कभी सुना है आपने कहीं कि उसको ओवरडोज दे दिया कि नहीं कल तो मेरी छुट्टी है, मैं नहीं रहूंगा, जा रहा पूरे हफ्ते के आज लगवा जाऊ, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये डॉक्टर फिजियोलॉजी को जानता है कि इसको किस चीज की जरूरत है। इमाम ने फरमाया हमें अल्लाह ने इमाम इसलिए बनाया है कि हम मसाइल के साथ साथ लोगों की फितरत को भी जानते हैं। वो जो पहली मर्तबा पूछने आया था वो बड़ा जल्दबाजी में नमाज पढ़ता है, वो क्या करता है, यहां का नाबूद और वहां का नस्तईन पढ़ता है और जल्दी जल्दी करता है, और बहुत जल्दी में नमाज पढ़ता है तो वो 1 मरतबा खड़े होते में पढ़ लेता है। जब उस पिछली रकत से जब खड़ा होता है तो कहता है सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। तो इमाम ने फरमाया ये जल्दबाज है, ये खड़े होते में शुरू करता है रुकू में खत्म करता है, तो इसके लिए बेहतर है कि 3 पढ़े ताकि वो 2 बिगड़ भी जाए तो 1 सही रहे। जो 2 बिगाड़ेगा, क्योंकि इमाम फितरत को जानते हैं, उस बैठने वाला सहाबी इमाम की उस बात को नहीं जानता। तो इमाम ने कहा हम जानते हैं ये बड़ा जल्दबाजी में नमाज पढ़ता, तो किसी की आदत को एकदम छुड़ाना, वो नमाज तो छोड़ सकता है आदत नहीं छोड़ेगा। बहुत से लोग कहते हैं कि अपना आज तो नियत ही नहीं की, हुजूर आपकी नियत तो जब आप 15 साल के हुए थे तभी हो गई थी रोजे की, रोजे को तोड़ने को कहते हैं आज हमने नियत नहीं की, बड़े प्यार से कहते हैं। एक साहब से पूछा कि 1 रोजा नहीं रखने के 60 रखने पड़ेंगे, तो कहा जैसे ये नहीं रख रहा हूं वैसे वो भी नहीं रखूंगा तो मेरे हाथ में है। तो मसला ये नहीं है कि मसलन इंसान अपने हिसाब से चले, फितरत को तो इमाम जानते हैं। तो कहा ये बड़ी जल्दबाजी में नमाज पढ़ता था, लिहाजा इसके लिए इलाज यही है कि 3 मरतबा पढ़े, कि 2 खराब हो जाए तो कम से कम जो मिनिमम क्राइटेरिया वो तो बाकी रह जाए। और वो जो दूसरी मर्तबा आया था वो बड़े इत्मीनान से नमाज पढ़ता है, वो 1 मर्तबा पढ़ेगा लेकिन सही पढ़ेगा, तो उसका भी 1 सही, इसका भी 1 सही, जरूरत शरीयत भी 1। तो अब बात साफ हो गई उनकी फितरत की बुनियाद पर। लेकिन वो हजरत जो 3 मर्तबा का फतवा लेके गए थे पूरे गांव में सीना तान के, मैं इमाम से मिल के आया, और इमाम का फतवा ये है कि जो 1 पढ़ भी रहा था उसकी 3 करवानी, कहा कि नहीं मैं ज्यादा जानता हूं, मैं इमाम से पूछ के आया हूं और मैं तो जाहिर सी बात है इमाम का हुक्म जो है हुज्जत है हमारे लिए। और वो शख्स जो एक का फतवा लेके गया था उसने अपने गांव में जाके एक का ऐलान कर दिया। अब हदीसें जो हमें मिली हैं वो इसी तरह से तो मिली हैं कि इमाम से किसी ने पूछा, उसको ये जवाब मिला, उसको नकल कर दिया गया। अब जब मराजे के पास हदीस आई तो एक की भी आ गई और एक तीन की भी आ गई। अब ऐसे में वो क्या फैसला करे? उन्होंने कहा कि मुमकिन है तीन हो, मुमकिन है एक हो। तो जिसने एक पर इक्तफा की उसने एक का फतवा दे दिया, और जिसने तीन वाली हदीस पे इक्तफा की उसने तीन का फतवा दे दिया। अब अजीजो आप खुद बताएं, उन्होंने अपनी जेब से दिया या इमाम की तरफ से दिया? इमाम की तरफ से दिया। और दुनिया के जरिए जो है इख्तलाफात हो गए कि अरे मौली साहब ये तो बड़े क्या बताएं, बस ये दो चार सवाल बड़े सैड हैं। अरे तुल्ला हमारे तो 12 इमाम नहीं लड़े, क्यों? आपने नजर से नहीं देखा, वरना दुनिया ने देखा तो दुनिया तो उसको लड़ाई कहती है। एक कहता इमाम ने सुलह कर ली, इमाम हसन मुश्तफा को कहते सुलह कर ली, और एक ने कहा इमाम ने तो जंग पे तैयार हो गए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ना उनकी सुलह पे चैन है ना इनकी जंग पे चैन है, आखिर करें क्या? एक साहब कहने लगे हुजूर ये जो गोश्त जो हलाल है वो ऊंट का भी है और बकरे का भी है, लेकिन उस दिन अल्लाह ने जब ऊंट क्यों नहीं भेजा जनाबे इस्माइल के लिए, ऊंट क्यों नहीं भेजा, बकरा ही क्यों आ जाता भाई, है तो ये भी हलाल। तो कहा कि अगर ऊंट आ जाता फिर आपके तो बकरा क्यों नहीं भेजा? तो अल्लाह पे एतराज शुरू कर, तो एक ही तो चीज आके कटेगी, ये तो एक आपके लिए कुर्बानी का बदल दिया गया था। लेकिन इंसान जब एतराज करने में आता है ये नहीं सोचता कि मैं ये एतराज अल्लाह की जात पे कर रहा हूं, ये अल्लाह की जात पे एतराज इंसान को नहीं करना। क्यों? क्योंकि जो अल्लाह कहता है वही हबीब खुदा कहता है, जो हबीब खुदा कहता है वही हमारा इमाम कह रहा है, जो पहला इमाम कह रहा है वही दूसरा इमाम कह रहा है। लेकिन उनको इमाम ही इसलिए बनाया गया है कि उनको इस बात का इख्तियार है कि किसी डॉक्टर को सिखा के भेजा जाता है कि तुम इसको जो है 100,000 मिलीग्राम देना, उसको 500 मिलीग्राम देना, नहीं उसको फिजियोलॉजी सिखाई जाती है कि इसके इंसान के फिजिकल तकाजे क्या है। अब आप जो माउंटेन पे रहते हैं उनका हिसाब किताब और होता है, जो दरिया के किनारे रहते हैं उनकी बॉडी किसी और तरह से तरक्की पाती है, जो लोग सहरा और डेजर्ट में रहते हैं उनकी तरक्की जिस्म के डेवलपमेंट और तरीके से होता है, लिहाजा उनको उसी तरह से कहा जाता है, उसी हिसाब से कहा जाता है। हमारे इलाके में मीठा पहले खाया जाता है पेट भर के, और फिर मुंह नमकीन करने के लिए थोड़ा सा नमकीन भी खाया जाता है। मुसलमानों के यहाँ पे पहले जो है खूब खाना खाया जाता है, उसके बाद कहते थोड़ा मुंह मीठा करा दो, सुन्नत-ए-रसूल बड़ी याद आती है, सुन्नत-ए-रसूल बड़ी याद आती है। लेकिन ये नहीं याद रहता कि भाई किसी को जलील करना, हकीर करना, अगर किसी गरीब मोमिन से इंतजाम ना हो सके पीठे का तो बड़ा सुन्नत के जरिए जलील किया जाता है। अरे हुजूर मीठा नहीं था, नहीं तकाजे हैं ये तमाम बातें हैं, वो हमारे इमाम ही इसलिए हैं। पैगंबर इस्लाम को कुरान ने शम्स कहा, कमर कहा, लेकिन सिराजु मुनीरा भी कहा है, क्या मेरे रोशन चराग, नूर वाले चराग जहां से नूर निकलता है सिराजु मुनीरा। तो अजीब बात है कि किसी को सूरज कह के कहूं आप तो चांद है, क्योंकि तशबियात का बड़ा फर्क पड़ता है, तशबियात का बड़ा फर्क पड़ता है। अगर किसी के बच्चे की तारीफ करें कि हुजूर आपका बच्चा बड़ा गोरा खूबसूरत है जैसे कफन का कपड़ा, आप बताइए वो क्या करेगा? अरे हुजूर मुझे नहीं चाहिए मेरे बच्चे की तारीफ, आपकी तारीफ है आपके पास रखे। अरे हुजूर हमने क्या कह दिया भाई, कफन का कपड़ा साफ सुथरा होता है। नहीं हुजूर इससे ना मिलाइए। और अगर उसी के बच्चे को जानवर कह दिया जाए तो वो खुश है, आपका बच्चा तो शेर है, खुश होता है ना इंसान? तशबियात का फर्क पड़ता है, सिफत का फर्क पड़ता है, उसके क्या उसकी वैल्यूएशन है उसका फर्क पड़ता है। लिहाजा कुदरत रसूल अल्लाह को कह रही है वह शम्स व दुहाहा, वह शम्स भी कह रही है और सिराज मुनीरा भी कह रही है कि कहां तो अजीज सूरज में और चांद में फर्क है, तो सूरज में और चिराग में फर्क है। सूरज में चिराग में क्या फर्क है? सूरज जब निकलता है तो वो क्या करता है, लोगों को रोशनी देता है, लेकिन क्या जितनी रोशनी उसके खुद के पास है उतनी रोशनी देता है किसी को?
क्या वही चीज इतनी तेज चमकने लग जाती है जितना सूरज चमक रहा है? लेकिन चराग की ये खुसूसियत है कि जब वो दूसरे को रोशन करता है तो वो नूर जो खुद में है वो दूसरे में भी आता है। आपने देखा होगा चराग से एक चराग रोशन कर, यहाँ पे जैसे अब तो डेवलप हो गया है, वरना पहले एक बल्ब लगाया तो उसकी रोशनी अलग है, उसके पड़ोस में एक और लगा दिया तो उसकी थोड़ी सी कम हो गई। ये माशाल्लाह रजीव भाई हमारे इलेक्ट्रिक का काम भी जानते हैं, बता सकते हैं कि जो है मामला ऐसा हो जाता है कि जैसे आप बढ़ाते जाएंगे लोड वैसे थोड़ा फर्क पड़ेगा। लेकिन चराग में ऐसा नहीं है कि जितनी पहले चराग में रोशनी उतनी दूसरी में नहीं होगी, नहीं, जितना देता है पूरी देता है, उससे चाहे एक रोशन करे, दूसरा रोशन करे, तीसरा रोशन करे, लेकिन सलाहियत ये होनी चाहिए कि वो चराग उसकी जात उसकी सिंफ से हो। शर्त ये है कि वो चराग उसी के हिसाब का हो। तो पैगंबर इस्लाम फरमा रहे हैं अव्वलोना मोहम्मद, औसतोना मोहम्मद, आखिरोना मोहम्मद, कुल्लोना मोहम्मद। तो हमारा अव्वल भी मोहम्मद, हमारा औसत भी मोहम्मद, हमारा आखिर भी मोहम्मद, और हमारा हम कुल के कुल मोहम्मद है। तो मोहम्मद से मुराद क्या, सबका नाम मोहम्मद नहीं है? मोहम्मद से मुराद यह है कि जो इल्म की रोशनी अल्लाह ने मुझे दे के भेजी, वही इल्म की रोशनी मैंने अली मुर्तजा को दी, वही इल्म की रोशनी अली मुर्तजा ने हसन मुश्तबा को दी, वही हुसैन तक पहुंची, वही अली इब्ने हुसैन तक पहुंची, वही मोहम्मद बाकर तक पहुंची। अब ये समझ लेना बात हमारी ही होगी, लेकिन आईने बदलते रहेंगे, जमाने बदलते रहेंगे, और इन पर एतराज ना करना, क्योंकि ये जो फैसला करेंगे वो अक्ल की बुनियाद पर और अपनी किस्मत की बुनियाद पर करेंगे। अब कोई इंसान समझ ले, हम अपने घर में कपड़े धोते हैं, अब तो माशाल्लाह ड्रायर हो गए, ड्रायर हो गए। कपड़े धोते थे तो पहले जल्दी सुखाने के लिए क्या करते थे, उसको निचोड़ते थे नहीं
सही।
अब उसको निचोड़ने के लिए क्या दोनों को एक तरफ मोड़ा जाएगा कपड़े को? क्या करेंगे आप बताएं, फैसला एक को इधर मोड़ा जाएगा, एक को इधर मोड़ा जाएगा, अगेंस्ट यानी अगेंस्ट उसमें पोजीशन में जब उनको पेश दिए जाएंगे तब उसका पानी निकलेगा नहीं निकलेगा? तो अब उसका मतलब जो है हदफ को पाना है, इख्तिलाफ नहीं। इस अमल का काम, इस अमल का तरीका जो है वो मुझे पानी निकालना है, और वो चाहे इधर मोड़ के निकले चाहे इधर मोड़ के निकले, मुझे पानी निकालना है। तो जब अपने हदफ पे पहुंचने के लिए हम अपने कपड़े को मुख्तलिफ सिफ्ट में निचोड़ते, जब तो अपने आप को इख्तलाफ नहीं कहते, जबकि मेरे ही दो आते हैं, एक हाथ ये काम कर रहे, एक हाथ वो काम कर रहा है। लेकिन अगर दीन मुबीन इस्लाम के बेड़े को पार लगाने के लिए मेरा एक इमाम सुलो का सहारा ले ले, एक इमाम जंग का सहारा ले ले, तो लोग उसको इख्तलाफ की चाल ला रहे हैं। इख्तलाफ की चादर उड़ा देते हैं। इरशाद होता है हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मीयीन रसूलन मिन्हुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। कि वो अल्लाह के जिसने मबऊस किया रसूल को उन लोगों में, लोगों में मिन उम्मीयीन, अब लोगों ने इसका नतीजा निकाला कि साहब रसूल उम्मीयीन में से रसूल बनाया, तो उम्मी उनके जमाने में उन्होंने बनाई ये लुगत। मुमकिन है कि जो चीज मैं सोच रहा हूं कुछ आप कुछ और सोच रहे हैं उसके बारे में, लेकिन चाहे कितना भी सोच लिया जाए अल्लाह ने जो माना सोचे हैं वो माने जाए, जो माना सोचे हैं वही माना जाएंगे। अगर अल्लाह ने किसी को नजीसुल ऐन यानी असल ऐन, असल नजासत, अब ऐन जो है घुटने को भी कहते हैं, ऐन जो है टखने को भी कहते हैं, ऐन जो है आंख को भी कहते हैं, ऐन जो है चश्मे को भी कहते हैं, तो अब कितने ही माना क्यों ना हो, लेकिन जो माना मुराद अल्लाह ने लिए हैं उससे मुराद वही होगी, उससे मुराद वही होगी। तो उम्मी सबसे पहले तो उम्मुल कुरान की बुनियाद पर आपको कहा उम्मी। अगर मैं हिंद का रहने वाला हूं तो कहेंगे हिंदी, पाकिस्तान का रहने वाला हूं तो कहेंगे पाकिस्तानी, कहते नहीं या निस्बती के जरिए ईरानी अफगानी। तो इसी तरीके से जो उम्मुल कुरान का रहने वाला है तो उसको उम्मी कहा जाएगा, और क्या कहा जाएगा। लेकिन इसके माना ये नहीं है कि साहब वो पढ़े ही नहीं थे, तो पढ़ने से की बात आएगी तो फिर जिब्रील भी नहीं पढ़े किसी स्कूल में, तुम मिकाइल भी नहीं पढ़े, जब कहीं पढ़े ही नहीं है तो फिर बात कहां तक पहुंच जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं। इल्म अल्लाह की अता है और वो जिसको चाहे देते हैं। कुरान मजीद की सबसे पहली पांच आयतें क्या कह रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इकरा बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक, पढ़ो। ये नहीं कह रहे कि पढ़ के सुन लो, कोई पढ़ दे तुम्हारे लिए। कुरान को क्या कहा जा रहा है? ऐ मेरे नबी पढ़ो। और पढ़ने का हुक्म उसको दिया जाता है कि जो पढ़ा लिखा होता है। अब हमारे और आपके नजदीक पढ़े लिखे का और मियार है, लेकिन अल्लाह के नजदीक जो मियार है वही है। जब अल्लाह सबसे पहले जो आयतें पेश कर रहा है, नाजिल कर रहा है, वो पांचों की पांचों आयतें इंसान की इल्म और उसकी खिलकत और उसके इल्म के जरिए है, और रसूल अल्लाह से बातें कर रहा है इस बात की, पढ़ाई लिखाई की। दुनिया तो करिए उम्मीद है और अल्लाह के ना पढ़ो तो ये कैसे उम्मीद? तो मालूम यह हुआ कि लोगों ने रसूल अल्लाह को नहीं बनाया है, अल्लाह ने रसूल अल्लाह को बनाया जो बताया जा रहा है। अब रसूल अल्लाह ने जो है 40 साल तक के बाद जो है अपनी बेसत का ऐलान किया, नबूवत का ऐलान किया, तो लोगों ने कहा 40 साल बाद उनका ऑपरेशन हुआ नाउज़ुबिल्लाह, और फिर उसके बाद यह हुआ। ऐसी बात नहीं अजीज, बात यह है कि हमारा सबसे बड़ा नबी, सबसे आखिरी नबी, सबसे बड़ी शरीयत आखिरी नबी की, सबसे बड़ी किताब आखिरी नबी की। तो नबी जो है खाली पैगाम लेके नहीं आया बल्कि मौजजा बन के आया। आप यहां पर मजलिसें करते हैं, जैसा पढ़ने वाला होगा, जैसा खतीब होगा, वैसा ही आप इंतजाम भी करेंगे। तो मसलन आम यहीं से कोई पढ़ गए तो उससे कहा जाएगा हुजूर जरा पढ़ दीजिए, वो पढ़ देंगे बैठ के, सुनने की तवज्जो भी दूसरी हो जाएगी। अब देखा साहब कोई और थोड़ा बड़ा आ गया तो फिर सुनने का अहतमाम और दूसरा होगा। कहा पता चला और कोई बड़ा खतीब आ गया तो लोग और आएंगे, मजमा बढ़ेगा। कि और आ गया कोई बैनुल अक्वामी लेवल का आदमी आ गया तो फिर सुनने के लिए मजमा जगह नहीं है। तो जैसे जैसे आएगा तो सबसे ज्यादा जो बड़ा होगा उसके लिए एहतमाम भी सबसे ज्यादा होगा, लेकिन अल्लाह के लिए सारी बातें उल्टी। जो सबसे बड़ा नबी है, हर नबी को भेजा, अच्छे दौर में भेजा, मिस्र में भेजा, यूनान में भेजा, इधर भेजा उधर भेजा, तो सब जगह क्या हुआ? इल्म का दौर था, यूनान में फलसफा था, मिस्र में जो है तहजीब तरक्की पा गई थी, हिंदुस्तान में तहजीबी हकीकतें रोशन हो रही थी, चीन में काम हो रहा था, ये सारे इलाके, ईरान में तहजीब थी, लेकिन वहां पर अपने आखिरी और सबसे बड़े नबी को नहीं भेजा। अभी मसलन मिसाल के तौर पे मुझे अब लाया जाए, बुलाने कहीं बुलाया जाए कि आप मजलिस पढ़िए और बड़ा एहतमाम होगा, लेकिन जब मैं वहां मजलिस पढ़ने जाऊं तो पता चला कि कुछ तो बच्चे पत्थर लेके बैठे हुए हैं और कुछ लोग मुझे हंस रहे हैं, कुछ तालियां बजा रहे हैं, कुछ सीटियां बजा रहे हैं। अब मेरे से कहा जाए हुजूर इतना ऐसी तकरीर कीजिए कि लोगों को मजा आ जाए, तो यही कहेंगे हुजूर किसमें करूं, ना जाने मेरी कौन सी बात बुरी लग जाए, ये बच्चा पत्थर मार दे, और ये जो हंस रहा है वो मेरी बात सुनने को तैयार नहीं, वो शख्स जो अजीब अजीब हरकत कर रहा है कि उसके लिए मैं क्या कह दूं। तो ऐसे में जरूरत यह है कि उनके मिजाज को सही किया जाए, फिर कोई बात बताई जाए। खुदा के रसूल को ऐसे जमाने में भेजा गया कि जहां पर जहालत ये कहती थी कि मैं सबसे बड़ा कत्ल करने वाला हूं, मैं सबसे बड़ा चोर हूं, मैं सबसे बड़ा डाकू हूं, बच्चे पत्थर मार रहे हैं, बड़े हंसी उड़ा रहे हैं, लोग हंस रहे हैं, ऐसे माहौल में जहां पर अपनी बेटी को जिंदा दरबार किया जा रहा हो, ऐसे दौर में आखिरी रसूल को भेजा जाए और आते ही वो जाहिलों से कह रहे कि मैं अल्लाह का पैगाम लेके आया हूं। खुदा के रसूल ने वहां पर अपना इल्म नहीं दिखाया बल्कि अपना कमाल और अपना मौजजा दिखाया और अपने इस एजाज से उस दुनिया को इस काबिल बना दिया कि वो दुनिया के सबसे ज्यादा फसीह ज़बान की किताब को समझने लग जाए, कुरान के उस सर चश्मों से सरशार होने लग जाए, रूहानी बातों को जानने लग जाए, वही के तकाज़ों और नज़ारों को समझने लग जाए, अहले बैत की हकीकतों से आशना होने लग जाए। तो ये तमाम چیزیں اگر جہالت کے دور میں کہ جب انسانیت آخری سانس لے رہی تھی اس کے بعد جہاں پر پانی کے اوپر برسوں جنگ ہوتی ہو کہ یہ میرے قبیلے کا پانی ہے یہ میرے قبیلے کا پانی ہے, اگر کوئی ایسی ذات آئے جو اس نہ لڑائی کو بند کر دے بلکہ یہ تہذیب سکھا دے کہ جب ایک انسان پانی پیئے تو اپنی پیاس سے پہلے دوسروں کی پیاس کو یاد رکھے اور پوچھے کہ بھائی آپ کو پانی چاہیے. عزیزو آپ بتاؤ مسلمانوں میں یہ کردار پایا جاتا ہے یا نہیں کہ آپ پانی پیجئے آپ پانی پیجئے. پہلے چار بھائیوں سے مجمع میں اکیلا نہیں پیتا انسان, اور پیتا ہے تو اس کو بد تہذیب مانا جاتا ہے کہ یہ تو انسانیت سے گر کے حرکت کر رہا ہے. لیکن اس نبی نے ان پانی پر برسوں جنگ کرنے والوں کو ایسے مقام پر پہنچا دیا کہ وہ اپنی پیاس کو بھول کے دوسرے کی پیاس کو یاد کرتے ہیں, دوسرے کی خاطر نواز کرتے ہیں, دوسرے کی مہمان نوازی کرتے ہیں. اس نبی کریم نے جو یہاں پر خدا نے کہا کہ ہم نے مبعوث کر دیا, مبعوث کے معنی ہیں بعثت کے معنی ہیں کہ مبعوث پہ رسالت, ہم نے آپ کو مبعوث پہ رسالت کر دیا. مبعوث کے معنی کیا ہے؟ مبعوث کے لغت میں چند معنی دیے اور اس کے مصداق دیے کہ مبعوث کے معنی ہے ابھارنا, اصل ہے بعثت کے معنی ہے ابھارنا, کسی چیز کو ایکٹیویٹ کرنا, ایکٹیو کرنا. تو اب کس کس چیز کے لیے رسالت کو آپ نے ایکٹیویٹ کیا اس زمانے کو, تو اس کی فہرست کتابیں کہتی ہیں شرک کے خلاف لوگوں کو ابھارا کہ یہ شرک تمہارا اصل خدا یہ نہیں ہے, اصل رب جلیل اور رب کریم وہ ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. اس کے بعد جہالت کے خلاف ابھارا کہ تمہاری اصل علم ہے, تمہاری اصل جہالت نہیں ہے, تمہاری اصل محبت ہے, تمہاری اصل عداوت نہیں ہے, تمہاری اصل جو ہے رشتوں سے پیار کرنا ہے, تمہاری اصل جو ہے رشتوں سے اس کو منقطع کرنا نہیں ہے, تمہاری اصل جو ہے عزت کرنا ہے اور عزت پانا ہے, تمہاری اصل جو ہے ذلت اور خواری نہیں ہے. عزیزو یہ تمام کی تمام باتیں نسل پرستی سے دور کیا, فساد کے خلاف آواز اٹھائی, خود غرضی کے خلاف آواز اٹھائی, نا حق کے خلاف آواز اٹھائی اور قید و غلامی سے آزاد کرنے کی اس تحریک کو بلند کیا, تو معلوم یہ ہوا کہ بعثت سے خالی قرآن پڑھنا نہیں سکھایا ہے, بعثت نے خالی نماز پڑھنا نہیں سکھایا ہے, بعثت نے خالی لوگوں کو ان سے زکات لینا نہیں سکھایا ہے, بلکہ بعثت نے لوگوں کو اس کی انسانی جوہر عطا کیے ہیں کہ جو اس سے کھو دیے گئے تھے, جو اس سے محو ہو گئے تھے, جس سے تہذیبیں ختم ہو گئی تھی. خدا کے رسول نے تمام چیزوں کو قدر بشر کو لوٹا دیا. وہ آدم جو علم کا سہارا لے کر فرشتوں سے بالا و برتر بن کے آیا تھا اس انسان کو یہ کمال دے دیا کہ وہ چاہے تو علم حاصل کر کے عالم بن جائے, وہ علم حاصل کر کے دنیا میں راہ کو روشن کر دے, علم کے ذریعے لوگوں کے مختلفات کو دور کر دے. تو پیغمبر اسلام کے اس نواسے کو جس کو کہا جاتا ہے السلام علیک یا وارثا محمد حبیب اللہ, حبیب اللہ کا وارث کہا جاتا ہے, حبیب خدا کا وارث کہا جاتا ہے, یہ علم میں اور جہالت کو اور غفلت کو اور ظلم کے خلاف ظلم ستیزی کی ادھر بعثت کا معنی یہ تھے, امام حسین علیہ السلام کے معنی یہ تھے انقلاب کے کہ وہ لوگوں کو غفلت سے, ظالموں سے, پریشانیوں سے, نجات سے, غلام سے, نسل پرستی سے, شہر پرستی سے لوگوں کو آزاد کرائیں. اور یہی وجہ تھی کہ امام عالی مقام کے خیمے میں ایک نسل کے انسان نہیں تھے, ایک قد کے انسان نہیں تھے, ایک قبیلے کے انسان نہیں تھے, بلکہ قبیلے اور انسان اختلاف رکھتے تھے لیکن ان کا جو نقطۂ اتحاد تھا وہ توحید پرستی تھا. کہ امام عالی مقام نے لوگوں کے دل میں کہ جو آواز اللہ اکبر علی اکبر بیان کر رہے تھے وہی جون غلام بھی اللہ کو اکبر مان رہا تھا, وہی غلام وہی قلب وہی قلبی بھی مان رہا تھا. لہذا امام حسین علیہ السلام رسالت باب کی بعثت میں بھی وارث بنے, بعثت رسالت میں اور اس حکم میں بھی آپ کے وارث بنے. اس کے بعد خدا کے رسول نے جب دیکھا کہ دین کو ترقی دینے کے لیے ان کفار مکہ میں اپنا وقت ضائع نہ کیا جائے بلکہ علم دین کی ترقیوں کو دوسرے لوگوں تک پہنچایا جائے, اس شریعت کے انعام کا حق دوسرے بھی رکھتے ہیں, تو آپ نے مکہ مکرمہ جیسے بلد الامین کو خدا حافظ کہہ دیا اور ہجرت کر کے چلے گئے. امام حسین علیہ السلام نے بھی جب دیکھا کہ مدینے میں رہنے سے نانا کا دین نہیں بچ رہا ہے تو آپ مدینے سے باہر نکل آئے, ادھر رسول کی ہجرت ادھر حسین کی ہجرت. رسول کے لیے مکہ چھوڑنا بڑا سخت, عزیزو آپ سب یہاں ضرور آ گئے ہیں, लेकिन हर इंसान का अपने वतन से कोई ना कोई लगाव है। मैं यहाँ देखता हूँ कि अपने कल्चर के रेस्टोरेंट्स होते हैं, लोग वहाँ जाते हैं, उसको वो अपने फैमिली के साथ शेयर करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी एक वाबस्तगी है उस खाने से, अपने मुल्क के लिबास को यहाँ पर खरीद के पहनना चाहता है, क्योंकि वो चाहता है कि मैं अपने बच्चों को बताऊं कि मैं अपने मुल्क से, ये इजहार मोहब्बत है कि जो गाही में गाही इंसान जरा सा टेलीविजन पे हमारे मुल्क का नाम आ गया, फौरन अपनी रुक चलती की आंखों को रोक दिया, अपने मिजाज को एक जगह कर दिया। ये तमाम बातें ये बता रही है कि कोई बात है कि जो आपको उस मुल्क से मोहब्बत पर आमादा कर रही है, चाहे वो जैसा हो, लेकिन मुल्क जो है और आजादारी का ताल्लुक भी यही है। आप दुनिया के बड़े से बड़े शहर की आजादारी कर लें, अगर उससे असल पूछा जाए तो उसको उसके गांव की आजादारी पसंद। हर इंसान अपने वतन की आजादारी करने को पसंद करता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आजादारी एक ऐसा मैटर है कि जिसमें इंसान मेहमान बनना कम पसंद करता है, मेजबान बनना ज्यादा पसंद करता है। बताइए ये मसला है या नहीं कि आपको लोग कहें खुशामदीद, आइए बैठिए, इससे ज्यादा वो चाहता है कि मैं खुद लोगों से ये काम करूं। और ये चीज अपने वतन में, अपने माहौल में, अपने कल्चर में मुमकिन है। यहाँ पे न जाने कितने जबान के इमाम बारगाह में मजलिस हो रही होगी, लेकिन आप समझते भी हैं, इंग्लिश भी जानते हैं, लेकिन वहां जाने के बजाय आपके कदम यहाँ पे चले आ रहे हैं। उसकी वजह यही है कि मैं यहाँ पर मेजबान हूँ और वहां मेहमान हूँ। यहाँ पर आकर यहां से अजीजों मेरा एक पैगाम है कि हमें जब कहा जाता है वॉलंटियर है तो कहा जाता है, लेकिन हम सब इमाम के वॉलंटियर हैं, हम सब इमाम के रजाकार हैं। क्योंकि जब ईमान का दस्तरखान पूरी दुनिया में बिछाया जाएगा तो सच कहिए कि इमाम आपको दावत देंगे, आप तो उनकी तरफ से खड़े होकर खाना खिलाएंगे लोगों को। जब हमारे साहिब जमान की पूरी दुनिया की यूनिवर्सल हुकूमत होगी तो हम सब मेजबान होंगे, हम रजाकार होंगे। यही हुसैनी दस्ते जो हुसैन का मातम कर रहे हैं अपने इमाम की आवाज पर लबैक कहेंगे, यही मर्सिया खां आगे बढ़ेंगे, यही मुकर्ररीन आगे बढ़ेंगे, ये खिदमत करने वाले यहां पर मिंबर पे बैठने से लेके हुसैन की मोहब्बत में जूतियां सीधा करने वाला तक और किचन में खिदमत अंजाम देने वाला तक ये चाहता है कि मेरा इमाम मुझसे राजी हो जाए। इस रजायत के लिए तो काम कर रहा है अजीजों, बस हमें ये सोचने के लिए, हमें इसको प्रैक्टिस और अमल में भी लाना है कि हम तैयार रहे, कि ये नहीं कि साहब मुंतजमीन ही ये काम करे। नहीं, अगर मैंने कोई काम देखा कि यहाँ पे टिश्यू पेपर पड़ा, मैंने उठा के फेंक दिया डस्टबिन तक, मैंने देखा कि कोई चीज यहाँ टूटी हुई पड़ी है उसको मैंने सुधार दिया, मैंने नहीं, ये सब लगाव रखती है कि आप अपने आप को मेजबान समझते हैं। अजीजों बहुत सही कहते कह रहे हैं हुजूर बहुत लोग हैं करने के लिए, मैं ही क्यों, ये मैं ही क्यों जो है, देखिए मेरे हाथ में जो है, मेरे नहीं आपके भी हाथ में माशाल्लाह हर हाथ में जो है चार उंगली है और चारों एक साथ सीधी है, लेकिन अंगूठा अलग क्यों बनाया गया? वो अल्लाह जो है हकीम, उसने वो चाहता तो ये भी सीधा बना देता, ये चार उंगलियां इस हाथ में है, लेकिन यकीन जानना मेरी आठ उंगलियों का इख्तियार मेरा बटन नहीं लगा सकता। आप कोई लगा के बता दे मुझे इन आठ उंगलियों से बटन तो मैं मान दूंगा। जितनी आसानी से आप ये अंगूठे के जरिए लगा देते हैं, ये है अंगूठा अलग, अल्लाह ने इसीलिए बनाया इसको, तो खुदा चाहता है कि यहाँ उंगली बन के ना रहो, अपनी कौम में अंगूठा बन के रहो, कि ना जाने किसको कब क्या मदद की जरूरत हो जाएगी। अगर एक अंगूठा किसी उंगली का सहारा बन जाए तो वो आराम से, और अगर ये अंगूठा तन्हा चाहे तो ये दोनों अंगूठे मिलके भी नहीं लगा सकते। आप खुद बताइए, अब इसको ये नहीं समझिएगा कि मुझे नहीं, ये आम पैगाम है, एक शियत का पैगाम है कि हमें एक दूसरे से, तो हमें उंगली बनना नहीं है बल्कि अंगूठा बनना है, कि ना जाने मेरी कब कौम के किस हिस्से को जरूरत पड़ जाए, शायद भी किसी काबिल हो जाए। इमाम ने हमें यही तो सिखाया, इमाम ने किसी को नजरअंदाज नहीं किया, रसूल अल्लाह की बस में भी किसी को नजरअंदाज नहीं किया गया। ये नजरअंदाज करने के तरीके बादशाहों के हैं, बादशाह तो हुकूमतें अलग होती हैं, ये वो होते हैं कि जिनको कुछ मिला मिलता है, बादशाह मिलती है और नबूवत वो होती है कि जो अल्लाह की तरफ से देकर ही भेजी जाती है। उसके छिनने का वो रहता है कि अगर बादशाह को कैद में डाल दिया जाए तो बादशाह नहीं रहता, कहते असीर हो गए, लेकिन नबी को कैद में डाल दिया जाए तो यूसुफ यूसुफ रहते हैं। कभी ये नहीं कि यूसुफ की नबूवत छिन गई, तो फिर उसकी वो ताजो ताज पे जब तक है उस वक्त तक वो बादशाह है, लेकिन हटते ही वो वहां से जो है साबित साबित का एक जुमला उसके साथ जुड़ जाता है, ये वाइस, ये हमारे एक्स प्रेसिडेंट हैं, ये हमारी अंजुमन के एक्स प्रेसिडेंट हैं, वो ये एक्स बड़ा खतरनाक है। लेकिन ये एक्स जो है ये नबुवत पे और इमामत पे नहीं लग सकता कि अगर हमारा इमाम उस जमाने में था तो इमाम अली को एक्स इमाम नहीं कह सकते, इमाम हसन मुश्तबा को एक्स इमाम नहीं कह सकते। इमाम इमाम रहता है, चाहे वो खड़ा हो तो इमाम है, बैठा हो तो इमाम है, हमारे दरमियान हो तो इमाम है, हमारे दरमियान ना हो तो इमाम है, उसका हजर और उसका सफर उसकी इमामत पे कोई। तो मालूम चला कि हुकूमत तो हट जाने और इधर उधर हो जाने की वजह से हट जाया करती है, लेकिन इमामतें और नबूवतें हमेशा साबित रहती हैं। लिहाजा हम उनके मानने वाले हैं जो बाकी रहने वाले हैं, हम उनके मानने वाले हैं। अजीजों हम गुलामों को क्यों माने जब हमारे यहाँ सरदारी बटी है? उस रसूल को मानते हैं जो सैयदुल मुरसलीन है, उस अली को मानते हैं जो सैयदुल औलिया है, हम उस फातिमा को मानते हैं जो सैयदतुन निसाए आलमीन है, हम उन हसन और हुसैन को मानते हैं जो सैयद शबाब अहले जन्नत है। जब सरदारी हमारे यहाँ पर है तो फिर हम गुलामों में क्यों जाएं? सलावत पढ़े मोहम्मद। अजीजों हिजरत में इमाम हुसैन अपने जद के वारिस, हदफ वही है, वहाबी दीन को बचाना और इल्म की रोशनी को फैलाना, दीन को और ज्यादा मुनव्वर करना, चाहे उसके लिए हिजरत क्यों ना करना पड़े। यहाँ पर भी दीन को बचाना, लोगों तक पैगाम रिसालत को पहुँचाना, दीन और शरीयत को आगे बढ़ाना, इमाम ने हिजरत की। और ये इमाम सिर्फ करबला में रोक लिए गए, लेकिन हदफ इमाम का नहीं रुका। हदफ इमाम का इतना बड़ा कि आज आप चले जाइए जिस खत्ते में जाएंगे वहां पर एक ना एक इमाम का मानने वाला और चाहने वाला आपको जरूर मिल जाएगा। इमाम का नाम भी मुसलसल लिया जा रहा है। और अगर हुसैन के मकसद को देखना चाहते हो कि हुसैन ने शहीद होके क्या किया, तो आज मुझसे सुन लीजिए हुसैन ने शहीद होके क्या किया। सुबह की नमाज का वक्त हुआ, ढाका के मौज़िन ने अजान दी, अभी उसकी अजान खत्म ना हुई थी कि कलकत्ता के मौज़िन का टाइम हो गया, उसने अल्लाह अकबर कहा। अभी उसकी अजान खत्म ना हुई थी कि बिहार के मौज़िन का टाइम हो गया, उसने अल्लाह अकबर कहा। अभी उसकी अजान खत्म ना हुई थी कि लखनऊ के मौज़िन का टाइम हो गया। बस इसी तरह से अजान का सिलसिला नहीं टूटता, अल्लाह अकबर पे शुरू होता है, फिर अल्लाह अकबर पे खत्म होने से पहले चार मरतबा अल्लाह अकबर उधर कहा जाता है, छठी दो मरतबा इधर कहा जाता है, फिर चार का वक्त हो जाता है, फिर दो मरतबा कहा जाता है, तो फिर दूसरे शहर में चार का वक्त हो जाता है। इसी तरह ये सरहद पार करता है, हिंदुस्तान से पाकिस्तान, पाकिस्तान से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से ईरान, ईरान से तुर्किया, तुर्किया से यमन, ये होता होता आगे बढ़ता है और यूरोप के सरहदों को पार करता है। बस अजीजों इतना जान लीजिए जब हमारे यहाँ पर आकर फजर का वक्त होता है तो फिर वहां से फजर का शुरू, मगरिब जोहर का शुरू हो जाता है, ये मगरिब का वक्त शुरू हो जाता है। ये कौन सा तलातुम और इंकलाब हुसैन ने कर दिया कि जो हुसैन ने ऐसा इंकलाब किया कि ना तो अल्लाह अकबर की आवाज को कोई रोक रहा है और ना कोई मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने से रुक रहा है। उस नवाजे की कुर्बानी का नतीजा है कि जिसने इंसान को, हम तो सोचते नहीं है, हम समझते नहीं है कि ये बातें बाकी हैं तो क्यों है, ये माना तो बाद में जाएगा, पहले इसके वजूद की बका को देखा जाए कि इसको बाकी किसने रखा, इसको बाकी किसने रखा। लिहाजा पैगंबर इस्लाम की हिजरत के साथ साथ नवास रसूल की भी हिजरत पैगाम बनकर आगे बढ़ी, बारिश अंबिया कहता है। और जिस तरह से पैगंबर इस्लाम की उम्मत, वो उम्मत जो जुल्म तशद्दुद का शिकार थी, वो उम्मत जो गुलामी का बोझ धो रही थी, वो उम्मत जो सितमगरों की सितमगरानियों को झेल रही थी, वो उम्मत जो बड़े लोगों से परेशान आ चुकी थी, वो उम्मत के जहां पर औरतों को जलील और खार किया जा रहा था, वो उम्मत के जहां पर गिने चुने इल्म का निशान, इल्म को जानने वाले थे लेकिन उनका इल्म भी कोई फायदा नहीं पहुंचा रहा था, ऐसे में पैगंबर इस्लाम ने कहा कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, अगर फला चाना पाना चाहते हो तो एक ऐसी कड़ी से जुड़ जाओ। अजीज जब कतरा कतरा रहता है तो उसके खत्म होने का इम्कान रहता है, लेकिन अगर वही कतरा समंदर में मिल जाता है तो उसके खतरा का उसके कम होने और खत्म होने के इम्कान कम हो जाते हैं। लिहाजा अपने आप को उस तौहीद से जोड़ने का हूं कि जिसकी बारगाह में सब बराबर है, जिसकी बारगाह में सब बराबर है, हैं, ये हुकुमरानों की तरह नहीं है कि वजीर का दर्जा कुछ और है, खजांची का दर्जा कुछ और है, रियाया का दर्जा कुछ और है। ये तौहीद को पहचानना है। उस नुक्ते प्रकार के जरिए पैगंबर इस्लाम ने समझाया कि जब आप प्रकार से सर्किल बनाते हैं तो सर्किल का रूल ये है कि उसका हर नुक्ता, हर पॉइंट सेंट्रल पॉइंट से बराबर की दूरी पे होता है। आप जब प्रकार से एक दायरा बनाएंगे, सर्किल बनाएंगे, तो जब तक हर पॉइंट अपने सेंट्रल पॉइंट से बराबर दूरी नहीं रहेगा तब तक सही सर्किल नहीं बनेगा। अब ऐसे में वो सर्किल तो दिखता है लेकिन उसके बीच का नुक्ता किसी को नहीं दिखता। लेकिन सर्किल का वजूद इस बात की दलील है कि कोई मरकज इत्तेहाद है, कोई मरकज और सेंटर पॉइंट है कि जिसकी बुनियाद पर ये सर्किल बनाया गया है। इंसानों के अब्दियत का सर्किल इस बात की दलील है कि कोई महबूद है और उस महबूद ने इनसे कहलवाया, अय गुनाह करने वालों, अय जुल्म बर्बरियत में रहने वालों, अय दीन से दूर रहने वालों, अय मेरे नबी इनको ये बता दो, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, अय मेरे इंसान, मुसलमान खिताब नहीं हुआ है, रसूल इनसे कह, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, इससे कह दो क्या है इंसान, तुझे तेरे रब करीम के सिलसिले में किसने धोखा दे दिया, किसने तुझे धोखा दे दिया कि तुझे माफ करने वाला है, ये तुझे बख्शने वाला है, ये तेरी अफ करने वाला है। तो अजीजो उम्मत को उम्मीद बनाने का नाम रिसालत मुआब है। यहाँ पर भी जब उम्मीदियों ने बनी उमैया के सरगनों ने दुनिया को ये एहसास दिला दिया कि सिर्फ जिंदगी तो बनी उमैया की है और उससे मिलके रहने वालों की है, दीनदारों को एहसास होने लगा कि जिस तरह उस जमाने में जहालत के दौर में लोग समझ रहे थे कि सिर्फ पैसे वालों को जीने का हक है, ऐसे ही ये दौर में समझ रहे सिर्फ शाम वालों को जीने का हक है, लिहाजा उनकी जिंदगियां तबाह हो रही थी। हुसैन ने उस उम्मत को उम्मीदें बांधी और कहा कि नहीं, तुम्हें मैं जीना सिखाऊंगा कि जिया किस तरह से जाता है, जिया किस तरह से जाता है, जिंदगी किस तरह से जी जाती है। और उसके बाद इमाम आले मुकाम ने वो शुजाआना जंग की, वो शुजाआना फैसले किए, इंसानों की कुव्वत और ताकत बढ़ गई। तारीख उठाकर देखिए, इमाम हुसैन के कदम तक मुमकिन है इंसानियत खामोश रही हो, लेकिन इमाम के कत्ल के बाद सैयद सज्जाद और जनाब ज़ैनब उलिया मकाम ने जो खुतबात दिए हैं, उन खुतबात को आप देखेंगे कि ऐसा इंकलाब कि जब तक बनी उमैया की ईंट से ईंट ना बज गई उस वक्त तक दिन भर में सैकड़ों कुर्बान और इंकलाबात आने आते रहे और लोगों की कुर्बानियां जारी रही। यानी उसके बाद तवाबीन उठे, उसके बाद मुख्तार उठे, उसके बाद बड़े बड़े लोग उठे कि जिन्होंने हुसैन के नाम पर दीनदारी को वापस अपने कब्जे में लेना चाहा। हाँ अजीजो, हुसैन का ये मरकज जे इत्तेहाद उम्मत को उम्मीद बनाने वाला अपने नाना के बराबर था, नाना की तरह था। इसी तरह जिस तरह रसूल करीम लोगों को माफ करते थे और बख्श देते थे, बड़े बड़े लोग आए रसूल के पास कि शायद अब फतह मक्का हो गई, अबू सुफियान और जितने बड़े बड़े सरगना थे खाने काबा की दीवार के पीछे छुप गए कि ऐसा ना हो अब हमारे साथ क्या होने वाला हो। खुदा की करीम रसूल ने कहा कि मेरा रब करीम है, मैं उसका रसूल करीम हूँ, मैं तुम्हारी सब खताओं को माफ करता हूं, बस अल्लाह के खिलाफ अपनी आवाज को ना उठाना, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। कैद के जो जंगी जो प्रिजनर्स ऑफ वार पकड़े गए, जंग के लोगों को जंगी लोगों की मुश्तें बांध के लाई गई, हाथों को बांध के लाया गया, या रसूल अल्लाह इन जंगियों को पकड़ा गया है क्या किया जाए। कहा कि इनमें से जो पढ़े लिखे अगर एक एक मुसलमान को पढ़ा देगा, पांच पांच मुसलमानों को अगर पढ़ा देगा तो इसको आजाद कर दो। यानी सजा भी रखी तो इल्म की रखी कि इनको पढ़ा लोगे तो हम तुम्हें आजाद कर देंगे। कि जहां पर अमल मिसकाल ज़र्रत खैर यरा वमन यअमल मिसकाल ज़र्रत शर्र यरा की आवाज को बुलंद किया था खुदा के रसूल ने, बख्शिश और अफ का यही कहा। और यही वजह है कि जब उमर इब्न अदवद को मार दिया मौलाए कायनात ने तो मुसलमानों ने गजब कर दिया, उसकी बहन को पकड़ लिया और उसके हाथ रस्सी से बांध दिए और रसूल की खिदमत में ले गए। उसने कहा कि खुदा के रसूल, मैंने सुना था आप बड़े करीम हैं लेकिन आपकी उम्मत के पास ये करामत नहीं है। खुदा के रसूल, मेरे हाथों को बांध के लाया गया। खुदा के रसूल ने कहा कि तुमसे बड़ी गलती हुई है, इसके भाई की खता थी, इस्लाम ये नहीं कहता कि दुश्मन के घर वालों और बेसहारा लोगों को इस तरह से बांधो। आजीजो रिसालत को आपने बख्शिश कर, ना जाने कितने बख्शिश कितने, और हम सब भी अगर जन्नत में जाएंगे तो बख्शिश की बिना पर जाएंगे, हम अपने अमल की बिना पर अमल कहाँ है। अमल का तो अल्लाह ने कहा है क्योंकि लकड़ियां जमा करते जाओ और उसको आग लगाते जाओ तो क्या बचेगा आपके पास। हम यही कर रहे हैं, एक अमल करते हैं फौरन जो है, क्योंकि हमें यकीन नहीं आ रहा है अल्लाह की बात पे, ना रसूलल्लाह की बात पे, ना इमामों की बात पे। हम एक अमल अच्छा करते हैं फौरी तौर पर उस पर आग लगा देते हैं, फिर बचता ही हमारे पास बख्शिश और अफ। अजीज हुसैन ने भी लोगों को माफ करना सीखा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के 2 मुहर्रम से लेकर 9 मुहर्रम तक, बल्कि सुबह आशूर तक इमाम के खेमे में 27 लोग लश्कर शाम से इमाम अली मुकाम की तरफ आए, 27 लोग आए, और इन सब को, और इनमें सबसे बड़ा मुजरिम जाना जाने वाला हुर इब्ने यजीद अर्याकी, जिसने खुद एतराफ किया कि फर्जंद रसूल सबसे पहला मैं था जिसने आपको यह खेल के लाया, वरना आप कहीं और चले जाते तो फर्जंद रसूल आपके साथ ही ना होता। लेकिन इमाम अली मकाम ने, जो खुदा के रसूल के वारिस है, कहा कि हुर मैंने तुझे माफ किया, मेरे अल्लाह ने तुझे माफ किया। और अजीजो इमाम ने उस हुर को हुर हकीकी बना दिया। हुर के माना है आजाद। कहा कि हुर तुम अपने जहन से अपने आजादाना फैसले से सोच रहे हो, इसी का नाम आजादी है। उमर इब्ने साद और यजीद के जहन से सोचने का नाम गुलामी है। वो देखो जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए वजीफा करार दिया है। हाँ अजीज़ो इमाम ने बख्श दिया, और ना जाने ऐसे कितने लोगों को हुसैन बख्शते चले गए और नाना की उम्मत के लिए बद्दुआ नहीं की। शिम्र खुद कहता है कि जब मैंने हुसैन के गर्दन पर छुरी चलाई है तो उससे पहले हुसैन के लबों पे आवाज थी, इलाही वो सैयदी वो मौलाई, मेरे खुदा अय मेरे सैयद सरदार अय मेरे महबूब, मैंने हुसैन के लबों पर कोई बद्दुआ के जुमले कलमात नहीं सुने जो ये कह रहे हो कि खुदा है मुझे जुल्म कर रहे हैं, मुझ पर जुल्म कर रहे हैं, मुझ पर जुल्म ढा रहे हैं, इलाही व सैयदी व मौलाए। अजीजो हुसैन मजलूम की यादगार को बनाने के लिए तरीके बदले, दुनिया बदल जाए, वक्त गुजर जाए, लेकिन मजलूम का नाम इस दुनिया पर बाकी रहेगा, क्योंकि जनाब सैयदा ने इसकी जिम्मेदारी ली है और वही इसका अज्र देने वाली है। अजीजो आज मुहर्रम की 7 तारीख हो गई। तारीख लिखती है कि 7वीं मुहर्रम को पानी का ये नहीं मालूम कब से बंद हुआ, 2 मुहर्रम से 7 मुहर्रम के दरमियान कब इमाम के पानी लाने पर, खैमों में पानी जाने पर पाबंदी लगाई गई, लेकिन ये यकीनी कहा जाता है कि 7 मुहर्रम की सुबह हुसैन के खैमे में पानी खत्म हो चुका है। आज से बच्चों की तशनगी मुसलसल थी, बड़े तो न जाने कब से पैसे थे। जब देखता है इंसान के घर में किसी चीज़ का ज़खीरा कम है और हालात की साजगारी नहीं है तो कोशिश करता है कि बच्चों के लिए उसको छोड़ दिया जाए, लेकिन तारीख लिखती है कि 7 मुहर्रम की सुबह से बच्चों को पानी मिलना बंद हो गया मेरा आका और मौला। लेकिन ऐसे में भी क्या कहने मेरे आका और मौला के चाहने वालों के मजाल है जो एक सहाबी ये कहकर छोड़ जाए फरजंदे रसूल आपके साथ तो भूख और प्यास बर्दाश्त करनी हो। अजीजों सिर्फ ये भूख और प्यास नहीं, बल्कि तमाम की तमाम चीज लोग जो है ईमान के हवाले कर चुके हैं। अरे मेरे आका ये दुश्मन तो बाद में शमशीरें चलाएंगे, फर्जंद रसूल अगर आप इजाजत दें तो हम अपने हाथों से आप अपने सरों को आपके कदमों में काट के डाल दें। ये जज्बा रखने वाले इमाम के वो चाहने वाले। हाँ अजीजो शबे आशूर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक से बढ़कर एक नज़ारे देख रहे हैं। इमाम ने सबसे पहले तो ये किया, कहा कि मैं चाराग को खामोश कर देता हूँ, रात का फायदा उठाकर अंधेरे का फायदा उठाकर जो जाना चाहता है चला जाए, मैं अपनी बैत तुमसे उठा लेता हूँ, मैं तुमसे राजी हूँ और रोजे महशर तुम्हार को सहारा दूंगा, अपने नाना से तुम्हारी शिफायत कराऊंगा। लेकिन जब चराग को वापस से रोशन किया जाता है तो बजाय इसके के लोग जाते हुसैन को घेरे हुए साहब कहते हैं फर्जंद रसूल हमारी वफा का इम्तिहान लिया जा रहा है, अरे जहरा के लाल, अरे ये दुश्मन की तलवारें तो बाद में हमारा सामना करेगी, अगर हुक्म हो तो हम अपने सरों को अपने हाथों से आपके की खिदमत में पेश कर दे। अरे जहरा के लाल सुबह का इंतजार है, अरे अली के फर्जंद हमें इजाजत दीजिए कि हम उन सहमों में अपनी जानों को कुर्बान कर दे और सहमों में रहने वाले आपके अहले हरम को यहाँ से सही और सलामत वापस भेज दे, सही और सलामत वापस भेज दे। एक के बाद एक खैमे में इमाम जाते हैं और जाने के बाद नजारा करते हैं। उम्मे लैला अपने लाल के गेसुओं को सवार रही है, उम्मे फरवा अपने लाल को सीने से लगाए कह रही है कासिम, अरे कासिम ऐसा ना हो कि अली अकबर और ना मोहम्मद तुमसे पहले चले जाए। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा, खुदा आपको किसी कम में न लाए सिवाय दम आल मोहम्मद के। सुबह आशूर नमूदार हुई, आशूर का नमूदार होना था, अली अकबर ने आजान दी, नमाज हुई, अरे इमाम के जानिब तीरों की बौछार हुई। तो पहले हमले में इमाम के 32 साथियों को तीरों से शहीद कर दिया गया। इमाम ने नमाज के बाद उनका गम मनाया, पंजे शहदा में उनको लाकर लाशों को रखा। उसके बाद एक के बाद एक जानिसार जाने लगा, अंसार अपनी हदियों को फिदा कर चुके। अकरबा की बारी आई, जनाबे कासिम जिनका सिर ज्यादा ना था आज ही तो इमाम की खिदमत में बार बार आते हैं। ऐ चचा जान मुझे भी जंग की इजाजत दीजिए, ऐ चचा जान मुझे भी जाने दीजिए। एक मरतबा हुसैन जो हसन से बहुत बेहद मोहब्बत करने वाला, हसन मुश्तबा से मोहब्बत करने वाला मां जाया, जैसे ही अपने भाई के लाल को देखा कलेजे से लगाते हैं और रोते हैं। अरे कासिम तुम मेरे भाई की निशानी हो, अरे कासिम तुम अपनी माँ का सहारा हो, अरे कासिम इस चांद के टुकड़े को किस तरह से मैं रन में जाने दूं। अजीज़ो जनाबे कासिम वापस खैमे मादरे गिरामी में आए, कासिम को परेशान देखा, क्या बात है बेटा? कहा चचा जान इजाजत नहीं देते। अजीज़ो एक मरतबा कासिम ने कहा कि कितना सख्त वक्त है मुझ पर कि मेरे साथ इमाम के चाहने वाले मारे जाए। ऐ मादरे गिरामी में अपने चचा पर अपनी कुर्बानी पेश न कर सकूं। एक मरतबा मादरे हुसैन को मादरे कासिम को ये ख्याल आया, भाई बेटा जब तुम्हारे बाबा इस दुनिया से जा रहे थे तो एक ताबीज तुम्हारे बाजू पर बांधा था और कहा था ऐ फरवा जब सबसे ज्यादा सख्त वक्त तुम पर गुजरे और मेरे कासिम पर सख्त वक्त आए तो इस ताबीज को खोल लेना। एक मरतबा फरवा की आंखों में चमक आई और कहा कासिम मसला हल हो गया, तुम्हारे बाबा की वसीयत याद आ गई। कासिम के बाजू से उस बाजू बंद ताबीज को खोला, जैसे उसको खोला क्या देखा, अरे एक मजलूम भाई का खत दूसरे मजलूम भाई के नाम था। उस खत में लिखा था ऐ भैया जब तुम गिर जाओ और सब अपनी अपनी कुर्बानियों को तुम पर पेश करें, ऐ कासिम मैं तो न रहूंगा, हुसैन मैं तो दुनिया में न रहूंगा, भाई के खत को देखा, तहरीर को देखकर जमाना याद आ गया। तारीख लिखती है कि बाजार की मजलूमियत याद आ गई, हसन के जिगर के टुकड़े याद आ गए, हसन की शहादत याद आ गई, हसन की मजलूमियत याद आ गई। अरे मेरे मजलूम इमाम, अरे मेरे मजलूम गरीब इमाम, अरे मेरे भैया, अरे काश आप होते तो देखते
जनाबे कासिम
Yeah.